सोमवार तारीख 21 नवंबर 2011, 5 समवाय, लेक्चर नंबर 2। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैच्छायाणं, नमो लोए सौवसाहूणं। जं जस्य जं देशे जेन विहानेन जं कालं मे नादं जिनेन नियदम् जम्मं वाहवमरणं वा संतस्सतं निदेशे तेन विहानेन तं निकालं मे कोशकदिवारेदुम् इन्दो वा सहजिनेन्दो वा एवं जो निश्चयदो जानदि दौवाणि सौपज्जाये सो सद्दिट्ठि शुद्धो जो संकदि सोहुकुदिट्ठि। द्रव्य यानी वस्तु स्वभाव में जो कारण कार्य व्यवस्था है उसको हम अपनी बुद्धि से समझे, उसका निर्णय करें। इसलिए जो कुछ अलग अलग सिद्धांत हम देख रहे हैं उसमें से अपनी 5 समवाय संबंधी चर्चा चल रही है। इसको देखते हुए हम हिंदी 116 पृष्ठ पर आए थे, गुजराती 116 जैनेन्द्र सिद्धांत कोश का। हाँ बापू जी मिला 116। जैनेन्द्र सिद्धांत कोशकार ने कहा है, ये जैनेन्द्र वर्णी हुए, उन्होंने सिद्धांत कोश लिखा है पूरा। हाँ ज्ञान कोश बहुत बड़ा है, 5-4 वॉल्यूम है बड़े बड़े उसके। हाँ उन्होंने कहा है कि जो कार्य अथवा पर्याय जिस निमित्त द्वारा जिस द्रव्य में जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस प्रकार से होने वाली होगी वह पर्याय उसी निमित्त द्वारा उसी द्रव्य में उसी क्षेत्र में उसी काल में उसी प्रकार से होती है। अपना पास
मैं कल लेके आता हूँ।
कौन सा सिद्धांत कोश
जो है मैं लेके आता हूँ?
अच्छा
वो 4 भागी है।
हाँ हाँ हाँ
हमको देखने का नहीं आता।
अच्छा हम बताएंगे आपको। हाँ उसकी एक उसकी ये भी मिलती है इंट्रो, 5वां भाग में केवल उसकी इंडेक्स है। वो नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं,
सेंटर में जाजराज को भी बता सकता।
हाँ हम वही बता देंगे आपको।
तो मेरे पास 2 आया तो 1 मैंने सेंटर को दिया है, देख लेते।
हाँ वो कैसा देखना कैसा बहुत आसान है देखिए।
और एक सिद्धांत को मैंने देखा था मेरे मित्र के पास, इतना हेवी ईच वॉल्यूम मस्ट बी मोर देन 3 to 5 किलो।
हम देखेंगे आज।
वो मिर्ची भी बहुत महंगी, वो जो मैंने देखी थी।
देखो अभी हमने जो वाक्य पढ़ा ना उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव और निमित्त, उन्होंने 5 कैसे डिवाइड किया, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और निमित्त। हमने जिसको स्वभाव पुरुषार्थ काल लब्धि होनहार और निमित्त कहा उसी को वहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव और निमित्त कह दिया। हम देखेंगे हमने जो 5 समवाय देखे वो इसमें कैसे फिट करना है वो हम देख रहे हैं। 5 समवायों में से मैं हम द्रव्य का स्वचतुष्टय घटित कर सकते हैं वह किस प्रकार है उसे देखते, क्योंकि ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या है वस्तु का स्वचतुष्टय है। वो 5 समवाय में कैसा घटित करना है वो अभी हम देख रहे हैं। स्वभाव में द्रव्य और क्षेत्र शामिल है, क्योंकि द्रव्य का अपना अपना क्षेत्र होता ही है, तो स्वभाव में उन दोनों को हम ले सकते हैं। काल लब्धि में काल समाविष्ट है, जो जो पर्याय की योग्यता होती है उसको द्रव्य का काल कहते हैं, तो काल लब्धि में उसी को ले लिया। भवितव्य में होने योग्य भाव और पुरुषार्थ में कारण रूप भाव है, उसको भी भाव कहेंगे। होने योग्य भाव यानी पर्याय, वो भाव कहेंगे ना। भाव शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। भाव गुण को भी कहेंगे, कहीं कहीं पर्याय को भी भाव कहेंगे, कहीं कहीं मात्र चारित्र गुण के पर्याय को भाव कहेंगे, जिसे हम शुभ भाव और अशुभ भाव कहते हैं। भाव का अर्थ क्या है? गुण पर्याय सबको भाव कहते हैं। वो द्रव्य का भाव, जैसे हमने पांच भाव देखे, पारिणामिक भाव, औक्षणिक भाव वगैरह, औदयिक भाव, तो वो भी भाव यानी पूरा द्रव्य कैसा है, भाव स्वरूप है। कोई भी द्रव्य ले लो, वो अपने अपने स्वभाव रूप है, तो भाव रूप है। तो भाव में गुण भी लेना और उसके पर्याय भी लेना। तो यहाँ तो भवितव्य ने वो पर्याय है ना, होने योग्य भाव, और पुरुषार्थ कारण रूप भाव, वो भी पर्याय ही है ना द्रव्य की। पुरुषार्थ भी द्रव्य की पर्याय है, और जो होने वाली पर्याय वो भी द्रव्य की पर्याय, वो भाव में हम गर्भित करेंगे। तथा निमित्त तो परद्रव्य की पर्याय है। पांच समवाय में एक निमित्त को अलग निकालो तो बाकी चार समवाय में द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटित हुआ। इससे तो स्व और पर की भी सिद्धि हो गई। अभी हमें पांच समवाय में स्व पर की सिद्धि करनी है। तो स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि और होनहार तो स्व में आ गए और निमित्त पर में आ गए। तो पांच समवाय में स्व और पर भी हो गया। इन्हीं पहले चार को हम उपादान कहेंगे और इसको निमित्त कहेंगे, तो निमित्त उपादान भी घटित हुआ। द्रव्य क्षेत्र काल हो अभी हमने घटित कर दिया। इन्हीं समवायों को निमित्त रूपादान रूप से विभाजित करना हो तो वह इस प्रकार होगा। स्वभाव त्रिकाली उपादान है, पुरुषार्थ अनंतर पूर्व क्षणिवर्ती पर्याय के व्यय रूप क्षणिक उपादान है। ये अमुक पर्याय का व्यय करके ये पर्याय उत्पन्न हुई उसमें, द्रव्य का उसमें पुरुषार्थ लगा, पूर्व पर्याय का व्यय और नई पर्याय उत्पन्न हुई। पुरुषार्थ इत्सेल्फ पर्याय है, परंतु उसमें वो पर्याय उत्पन्न हुई, उसमें द्रव्य का अपना बल लगा ना, और वो उसमें पूर्व पर्याय का व्यय भी हुआ, नई पर्याय उत्पन्न भी हुई, ये दोनों को उसमें पुरुषार्थ में ले लेना। और काल लब्धि तथा भवितव्य उस समय की पर्याय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान कारण है। यानी सभी हमने उपादान के तीनों ही इसमें घटित किए। निमित्त को तो निमित्त रूप से हमने देखा ही है। क्या अब तुम इन पांच समवायों को द्रव्य और पर्याय में विभाजित कर सकोगी? तो कहते स्वभाव द्रव्य है, पुरुषार्थ काल लब्धि भवितव्य और निमित्त सब पर्याय है ना। स्वभाव तो वो त्रिकाल हो तो द्रव्य में आ गया, और बाकी भले पर्याय है, वो अपनी है कि पर की उसको अभी हम निग्लेक्ट करेंगे, कौन करेंगे, तो ये सारे पर्याय में आ गए है ना। मजे की बात, हमें जो सिद्धांत मालूम है, जो तत्व हम जानते हैं, उनकी दृष्टि से किसी भी विषय पर विचार मंथन करके हमें बहुत सारी जानकारी उपलब्ध होती है। उनका यथार्थ भाव भाषण होता है। भाव भाषण महत्व है, केवल शब्द रखने से कार्य नहीं चलेगा। भाव भाषण पहले आपने सुना होगा ना, इनकी सीडी में भाव भाषण क्या होता है। छोटे बच्चे प्यार के गीत गाते हैं, तो उनको तो उसका कोई भाव नहीं भाषा, वो तो उनको वो राग यानी गाने के जो राग है, धुन है, उसमें वो तो म्यूजिक है, चाल, हाँ, तो उस पर वो नाचते रहते हैं, उनको उसका कोई भाव पता नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि यथार्थ भाव भाषण होता है। अब अभी हमने जो पांच भाव देखे ना, असाधारण भाव, जीव के पांच असाधारण भाव, उसमें हम ये समवायों को उसमें हम देखेंगे कहाँ कौन सा है। तो पांच भावों के नाम सुने हैं ना, पारिणामिक भाव, औषमिक भाव, शायोषमिक भाव, शायिक भाव और औदयिक भाव। ये जीव के असाधारण भाव है जो जीव द्रव्य के अलावा अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं पाए जाते। असाधारण क्यों कहा? वो जीव के लिए स्पेसिफिक है। हाँ, अन्य में नहीं पाए जाते हैं, जीव में पाए जाते हैं। जो सब में पाए जाएंगे तो उसको साधारण कहेंगे, सामान्य कहेंगे, कॉमन कहेंगे। ये कैसे भाव है? जीव में पाए जाते हैं। इनमें से पारिणामिक भाव स्वभाव रूप भाव है, अन्य चार भाव पर्याय रूप भाव है। देखो यहाँ स्वभाव को यानी वो गुणों को भी भाव कहा, पर्याय को भी भाव कहा, है ना? पर्याय है, कार्य है। स्वभाव तो त्रिकाल होता है, उसमें निमित्त की आवश्यकता नहीं होती। क्या कहा? स्वभाव में निमित्त क्यों नहीं होता? हाँ, स्वभाव कार्य नहीं है। कार्य उसको कहते जो पहले नहीं था और जो हुआ है। जो पहले नहीं था और हुआ उसको वो क्या है? तो पर्याय है। अवस्था में हम कहेंगे ये पहले ये अवस्था नहीं थी और अब हुई और अभी है तो वो तो बदल कर अन्य भी अवस्था होगी। परंतु स्वभाव तो कभी ऐसा नहीं कहेंगे, नया उत्पन्न हुआ उसको स्वभाव नहीं कहेंगे। किसी भी द्रव्य का स्वभाव कब से तो अनादि से है, 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 है। जो नया उत्पन्न होता है वो तो पर्याय है। तो कहते हैं कि जो स्वभाव त्रिकाली है, निमित्त और उपादान की चर्चा किसमें आती है? कार्य में, पर्याय में आती है। उसका कारण क्या हम कहेंगे? स्वभाव का कारण क्या है? तो कहते स्वभाव का कोई कारण नहीं है। तुम ख्याल में आती बस स्वभाव तो है, बस है, वो कभी बना ऐसा हुआ ही नहीं
है,
अनादि से स्वयं सिद्ध है।
ज्योति में अंदर पड़ा ही है।
हाँ, पड़ा है। अगर वो नया होता तो हम कहेंगे, हम तो कारणों की चर्चा करते। स्वभाव तो बिल्कुल अकारण है, अकारण, उसका कोई कारण ही नहीं है, बस है, अनादि से ही है। और वो कोई किसी में नया स्वभाव उत्पन्न नहीं होता है, वो जो है वो तो है, वह है। तो स्वभाव तो त्रिकाल होता है, उसमें निमित्त की आवश्यकता नहीं होती, परंतु कार्य में निमित्त की उपस्थिति होती है। क्या था? उपस्थिति होती है बस। हाँ, स्वयं में होती है। जो कार्य में होती है, पर्याय में होती है, स्वभाव में नहीं। यहाँ जो जीव के ये पर्याय रूप चार भाव है, ये कौन से पर्याय रूप भाव देखे अभी अभी हमने? कौन से? हाँ 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 हाँ
हाँ
पर्याय रूप भाव हमने
पहले तो
चार ही है।
पहले चार
पारिणामी भाव तो स्वभाव भाव, वो तो अनादि से है, है और है, और वो एक सदृश है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये पर्याय रूप चार भाव है। नीलाबेन, ख्याल में आ रही बात? हाँ, ये नाम सुने ना, उदय कौशमिक है। हाँ, उनमें निमित्त रूप से कर्म की विशिष्ट अवस्था पाई जाती है। ये नाम कैसे पड़े? औदयिक शब्द कैसे तैयार हुआ? शब्द कैसे तैयार हुआ? उदय से औदयिक, जैसे शरीर शब्द है तो जब कोई रोग होता है तो हम क्या कहते हैं? ये शारीरिक है पीड़ा। मन से होता है तो क्या कहते हैं? मानसिक है। तो इसे उदय शब्द से कौन सा शब्द तैयार हुआ? औदयिक, यानी जीव के भाव को हमने औदयिक नाम दिया। किसकी तरफ से? उदय की तरफ से, कर्म के उदय की तरफ से ये नाम दिया। ये कर्म ने उत्पन्न नहीं किया है, वो जीव का अपने पर्याय, अपने से हुई, अपने में हुई, उपादान से हुई, परंतु सामने निमित्त कौन सा है वो बताने के लिए उसको क्या कहा? औदयिक। औपशमिक भाव जब सम्यक दर्शन होता है पहली बार, तो वहाँ औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ, तो यहाँ जीव में वो सम्यक तो उत्पन्न हुआ। सम्यक तो सम्यक तो है, तो उसको औपशमिक नाम क्यों दिया? तो सामने कर्म की कौन सी अवस्था थी? मिथ्यात्व और अंतानुबंधी का उपशम चल रहा था। तो यहाँ जीव के भावों को नाम क्या दिया? औपशमिक सम्यक। वो कर्म ने उत्पन्न नहीं कराया है, वो सारे उसके तो स्वभाव, पुरुषार्थ, कालब्धि और ये जो कुछ होना है वो तो सब उसमें अपने में थे, अपने से हुआ है। औपशमिक सम्यत्व जीव के अपने से हुआ है। सामने निमित्त भी उसी समय है। क्या हुआ उस समय? कि जीव ने तत्व विचार में डूब गया और अपना लक्ष्य किया तो अपने आप वहाँ कर्मों का उपशम हुआ है। तो उस अवस्था को देखकर जीव के भावों का नाम क्या रखा हमने? औक्षणिक। ये नाम रखा है कि निमित्त को बताने के लिए। निमित्त ने कुछ नहीं किया है, जो कुछ हुआ है वो जीव में अपने से अपने में हुआ है। नहीं तो ये निमित्ताधीन दृष्टि रहती, अरे कर्म का उदय चल रहा है वो नहीं रुकेगा तो क्या करेंगे हम, कर्म ने हमको हैरान 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 कर रखा है। ऐसा है नहीं। वो जड़ जीव को हैरान करे, ये कहाँ से आई बात? हाल में आई ना बात। वो कर्म जड़ है, हाँ हम वो निमित्त की अपेक्षा कह देते हैं, परंतु वो कुछ जीव का बिगाड़ नहीं सकता है। भले एक संयोगों में कुछ भी बात हो जाए तो जीव उस संयोगों को ये मेरे है और मुझे ऐसा है वैसा है चाहिए, इष्ट अनिष्टपना की कल्पना जीव करता है और वो स्वयं अपनी कल्पना से सुखी दुखी होता रहता है। कर्म ने हमारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, पहले ये हम नक्की करेंगे, नहीं तो क्या है उसको देख देख के हम रोते रहेंगे। तो कर्म के हाथ पैर पड़ने पड़ेंगे, अभी बाप हमको छोड़ दो। तो ऐसा तो नहीं होता है,
मेहरबानी
उसकी मेहरबानी। तो पर की मेहरबानी पर ये जीव ऐसा ही अनादि से मानता आया है, या तो मैं दूसरे का करता हूँ या पर के कारण मैं हुआ हूँ। तो यहाँ कहते हैं कि कर्म की विशिष्ट अवस्था पाई जाती, इसलिए इन निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए, बस इतनी बात थी, निमित्त बताना इतना ही प्रयोजन था। तो जीव के इन भावों को कर्म की उन अवस्थानुसार नाम दिए जाते हैं। हाल में आई बात ये, जीव के जिन भावों के समय कर्म की उपशम अवस्था पाई जाती है उन्हें औपशमिक भाव कहते हैं। ये क्या कि ये निमित्त की ओर से नाम दिया है। जीव के मोहराग द्वेष रूप भावों के समय कर्म का उदय निमित्त रूप से हाजिर रहता है, इसलिए इन भावों को औदयिक भाव कहते हैं, क्योंकि कर्मों का उदय है ना यहाँ चल रहा है। औदयिक भाव हुए क्यों? जीव के अपने वो उस समय की योग्यता से उसके अपने उसमें उसका उल्टा वैसे रागादि भावों का ही पुरुषार्थ चला, वैसी होनहार थी, वैसे वो सब कुछ लगा लेना उसमें। जीव के जिन भावों के समय कर्म का क्षोक्षम निमित्त रूप से पाया जाता है उन भावों को क्षयोक्षमिक भाव कहते हैं। हमारा जो ज्ञान का उघाड़ है, जब तक जीव सर्वज्ञ नहीं होता, केवल ज्ञान नहीं होता, तब तक उस ज्ञान को क्षयोक्षमिक ज्ञान कहते हैं। अरे ज्ञान तो अपने स्वभाव में से प्रकट हुआ है, जानना 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 हमारा स्वभाव है, परंतु यहाँ केवल ज्ञान रूप जानना नहीं हो रहा है, अल्प ज्ञान रूप पर्याय चल रही है, क्योंकि वहाँ कर्मों में ज्ञानावरण कर्म में क्षोक्षम रूप अवस्था चल रही है। वो बताने के लिए कहते हैं ये क्षोक्षम भाव है। हमारा जो जानना हो रहा है वो कर्मों के कारण हो रहा है क्या?
नहीं।
जैसे अभी धूप आ रही है, इतने में बादल छा गए तो प्रकाश धुंधला हुआ, धुंधला भी जो प्रकाश है ये धुंधला धुंधला प्रकाश मेघ के कारण है ना? प्रकाश तो सूर्य का है। हाँ भले वो धुंधला हो गया है, हाँ उसमें हम निमित्त क्या कहेंगे? वो बादल आ गए। तो यहाँ जीव में तो पूरे केवल ज्ञान रूप शक्ति अंदर में द्रव्य में विद्यमान है, करे की बात नहीं, द्रव्य में विद्यमान है। अभी वहाँ बादल आड़े रहते वो तो दृष्टांत थोड़ा पार्शल अधूरा ही है। यहाँ ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान प्रकट है पर्याय में और फिर उसमें आवरण आए, ऐसा नहीं है। शक्ति है केवल ज्ञान रूप होने की, परंतु जीव अपनी ही योग्यता से मति शुद्ध ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है अभी वर्तमान में। तब कर्मों की तरफ देखा तो अवस्था कौन सी? क्षोक्षम चल रहा था। तो हम उस ज्ञान को क्या कहेंगे? ये क्षोक्षम ज्ञान है। समझ आई ना बात? जीव के जिन भावों के समय कर्म की क्षय रूप अवस्था पाई जाती है उन भावों को क्षायिक भाव कहते हैं। अब जीव को केवल ज्ञान क्यों हुआ? तो उसकी अपनी योग्यता से। उस समय कर्मों की तरफ देखा, ज्ञानावरण की क्या अवस्था थी? तो उसका पूरा क्षय हो गया था। तो वहाँ कर्मों का क्षय हुआ है और यहाँ जीव में केवल ज्ञान हुआ है, अपने से हुआ है। तो हम उस भाव को क्या कहेंगे? क्षायिक ज्ञान कहेंगे। क्यों? वहाँ ज्ञानावरण का पूर्ण क्षय हो चुका है, तो ये क्षायिक भाव कहेंगे। परंतु अब ये चार भाव बता दिए जो पर्याय रूप थे, उसमें निमित्त का ज्ञान कराने के लिए उनको वैसा वैसा नाम दे दिया। अब कहते जीव का पारिणामिक भाव कार्य न होने से, निमित्त किसमें होता है? कार्य में, यानी पर्याय में। पारिणामिक भाव क्या है? स्वभाव है, वो कार्य नहीं है। वो पर्याय नहीं होने से उसमें निमित्त का प्रश्न ही नहीं है। यह तो जीव का अनादि अनंत त्रिकाल स्वभाव है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होते, कोई चेंजेस नहीं होते, वो जो है एक सदृश भाव है। पर्याय जब इस निज ध्रुव पारिणामिक भाव को, क्या क्या कहा? अपने ही पर्याय। किसको स्वपने से स्वीकार करना है? निज ध्रुव, ध्रुव यानी वैसा का वैसा, वैसा का वैसा पारिणामिक भाव को। ये जो त्रिकाल रहने वाला एक सदृश अपना पारिणामिक भाव है, स्वभाव भाव है, उसको, जिसको हम शुद्धात्मा भी कह रहे हैं, अभी परमात्मा प्रकाश में जिसकी बात आ रही है, अभेद होकर, क्या पर्याय दूर रहकर नहीं, पर्याय द्रव्य के साथ अभेद होकर, यानी वहाँ कुछ ये पर्याय, ये गुण है, ये प्रदेश, ऐसा कुछ नहीं, मैं अखंड अभेद एक द्रव्य हूँ, ऐसा अभेद होकर स्वपने से स्वीकार करती है। ये महत्व की वही, इसमें से एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है। पर्याय ने द्रव्य के साथ अभेद होकर क्या समझा? कि मैं तो त्रिकाल हूँ। तो मैं तो त्रिकाल हूँ कौन कह रहा है? शुद्धात्मा कह रहे कि पर्याय कह रहे? पर्याय के कैसे? वो त्रिकाल थोड़ी, वो तो एक समय वाली है, परंतु वो द्रव्य के साथ अभेद हो गई, ये जानने वाली पर्याय द्रव्य के साथ अभेद हो गई, और अपने को कहते मैं तो त्रिकाल हूँ, भेद किए बिना अपने को उसने ग्रहण कर दिया। अभी वो जानने वाली पर्याय है वगैरह, वो भेद भी मिटा दिया है, बस मैं हूँ। ख्याल में, अभी आप बोलते हो कि मैं यहाँ आई, तो मैं यहाँ आई बोलने का कार्य किसने किया? नहीं नहीं, हम अभी लौकिक की बात करते हैं। जीव तो क्या जीव आई? क्या आप वो पूरा शरीर आया? तो जीव, हम जीव बोलिए ऐसा नहीं कहते, मैं बोल रही हूँ, मैं आई, तो जीव अपने लिए मैं नहीं कह रही, ये पूरा शरीर अभेद होकर मैं कह रही है ना? कहने का कार्य भले जीव द्वारा हो रहा है, परंतु अपने को अखंड समझकर वो ये मैं कह रही है। ख्याल में आई बात? पर्याय द्रव्य के साथ अभेद होकर मैं त्रिकाल हूँ ऐसा मान रही। तो कहते स्वपने से स्वीकार करती है, उसी को जानने में मग्न होती है, तब पर्याय विभाव रूप से नहीं अपितु स्वभाव रूप से परिणमित होती है। देखो, जो अपने को द्रव्य के साथ अभेद होकर अपने को उस रूप जानती हुई उत्पन्न होती है, वो पर्याय तो ऐसी कहलाएगी, भी स्वभाव रूप पर्याय कहलाएगी। अपने स्वभाव को जानते हुए ही जो पर्याय प्रकट हुई है, उस पर्याय को हम क्या कहेंगे? ये स्वभाव पर्याय है। पहले क्या कर रही थी पर्याय? उसका इधर उधर लक्ष्य था, अन्य को जानने में रुकी थी, और उसमें उसको स्वर पर क्या है उसको पता नहीं था। अब वही पर्याय अपनी ओर मुड़कर यह मैं हूँ उसने स्वीकार किया, क्योंकि हम तो अनादि से द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा शुद्ध ही है, त्रिकाल एक रूप पारिणामिक भाव जिसको कहते हैं। जब पर्याय अपने से ही अभेद होकर स्व को स्वीकार, यह मैं हूँ ऐसे पर्याय ने स्वीकार किया, अपना अस्तित्व मिटाकर वो द्रव्य के साथ अभेद होकर यह मैं हूँ उसने स्वीकार किया, तब क्या हुआ? समय दर्शन हो गया। कहाँ था वो? कहाँ? बाहर से नहीं लाया है। पूर्ण वितराग स्वभाव, केवल ज्ञान स्वभाव, सामर्थ्य शक्ति यहीं पड़ी है, और उस पर्याय ने अपने को कैसा स्वीकार किया? उस रूप स्वीकार किया। वो एक समय में मिटने वाली पर्याय है, परंतु उसने मैं द्रव्य अभेद हूँ, अखंड हूँ ऐसा स्वीकार किया, तो वो पर्याय भी निहाल हो गई, वो भी समय दर्शन रूप प्रकट हुई। अभी तक तो विभाव रूप थी, उसने अपने को त्रिकाल द्रव्य के साथ अभेद रूप अनुभव किया, तो उस पर्याय को अभी हम कहेंगे ये सम्यक्व की पर्याय उत्पन्न हो, ये स्वभाव पर्याय उत्पन्न हो। अपना त्रिकाल स्वभाव यहाँ पड़ा है अनादि से, और पर्याय अपना अपनत्व उसके साथ नहीं करते हुए पर के साथ अपनत्व कर रही है। उसने क्या किया, जो त्रिकाल स्वभाव है यहाँ पर पहले उसको स्वीकार करके उसके साथ अभेद हो गई। जानने में ही होना है ये कार्य, सब सब क्या होगा पर्याय में, वो पूरा उसका स्वभाव जैसा है वैसा पर्याय में प्रकट होगा। तो कहते वो स्वभाव रूप परिणामित होती है, जीव को आत्मानुभूति होती है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, अतीन्द्रिय आत्मिक सुख का अनुभव होता है। ये एक ही बात है, उसको अलग अलग भाषा में बताए। द्रव्य पर्याय ने अपने को यानी शुद्धात्मा को, निज शुद्धात्मा को अभेद होकर स्वपने से स्वीकार किया, उसी को जानने में रुक गई, तो क्या हुआ वहाँ पर आत्मा का अनुभव हुआ। कैसे समझा, अति इंद्रिय आनंद की अनुभूति है न बात। आचार्य कल्प पंडित टोडल मजी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में इन पांच समवायों का बहुत अच्छी तरह से विवेचन किया है, वही इस प्रकार है। एक दो मिनट लेते हैं। यहाँ प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्यानुसार बनता है, या मोहादि के उपशमादि होने पर बनता है, या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर होता है, सो कहो। क्या कहा, कितने कितने पूछे बातें पूछी,
एक
हाँ देखो यहाँ क्या बात है, काल लब्धि पूछा, काल लब्धि से होगा, भवितव्य से होगा, कर्म के उपशम ने क्या निमित्त से होगा, के उपृष्ठार्थ से होगा, मोक्ष का उपाय कैसे होगा, ये पूछा है। पंडित जी स्वयं ही प्रश्न पूछते हैं और भी स्वयं ही उत्तर देंगे। ठीक ज ज लगाया इन्हें, निमित्त से ही होगा सब, ये सभी हो गए वहाँ कार्य, पांचों समवाय हो गए। ये तो प्रश्न पूछा, काल लब्धि से होगा, पुरुषार्थ से होगा, भवितव्य से होगा, कि मुंह का उपशम होने से होगा। तो कहते यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो, प्रश्न का ही प्रश्नकार का ही प्रश्न चल रहा है कि काल लब्धि और भवितव्य से होना है तो हमें उपदेश क्यों दे रहे मोक्ष मार्ग प्रकट करने का, जब होना है सब होगा। पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, कोई उपाय कर सकता है कोई नहीं सकता, तो उसका भी क्यों कहते हैं, तो कारण क्या है, तो उसका समाधान बताते हैं। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, जिसको हम पांच समवाय कह रहे हैं, अनेक कारण होते हैं। सो मोक्ष का उपाय बनता है वहाँ, यानी जब बनता है, बनता है ये कार्य हुआ तो वहाँ पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, काल लब्धि भी होगी, पुरुषार्थ भी होगा, वो होनहार भी होगी, और नहीं बनता वहाँ तीनों ही कारण नहीं मिलते। क्या कहा, जहाँ मोक्ष का उपाय बन रहा है, मोक्ष का उपाय नहीं सम्य दर्शन, जहाँ सम्य दर्शन होता है वहाँ ये सब आ मिलते हैं स्वयं। वहाँ काल लब्धि है तभी तो हो रहा है पुरुषार्थ, वैसा वैसी होनहार है, वैसी उसी जाति का पुरुषार्थ कौन सा, मोक्ष का पुरुषार्थ हो रहा है, और वहाँ कर्म के उपशमादि तो स्वयं वो हो गए, जीव को तो उसमें कुछ करना है ही नहीं है, क्योंकि कर्म में जीव का कुछ नहीं चलता है, उसमें स्वयं वो हो जाएगा। मैं यह प्रश्न पूछा था प्रोग्राम जी साहब ने कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर होगा, भवितव्य अनुसार होता है, या मोह के उपशमादि से होने होता है, या पुरुषार्थ से होता है, चार ऑप्शन पूछे। तो कहते यदि काल लब्धि और भवितव्य अनुसार कहते हो तो हमें उपदेश क्यों दे रहे हैं, और पुरुषार्थ से है तो उपदेश सभी सुनते हैं, कोई करता है कोई नहीं करता, ये क्यों, तो उसका कारण कार्य है, समाधान क्या बताया, कार्य के होने में अनेक कारण वहाँ आ मिलते हैं, जहाँ हाँ हो गया, जहाँ मोक्ष का उपाय बनता है वहाँ सभी कारण है, वहाँ पर उपाय हो रहे हैं, वो कार्य बन रहे हैं ना, तो वहाँ उसके सभी समवाय हाजिर है। हम क्या कहते हैं, जब कार्य होता है तो उसके कारण वहाँ विद्यमान होते ही है, तो जहाँ मोक्ष का उपाय बन रहा है तो वहाँ वो काल लब्धि भी आई है, उसका पुरुषार्थ भी हो रहा है, उसके वो होनहार भी है, वो सब कुछ है। तो वे आगे कहते हैं, जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि, उसी को काल लब्धि कहा। जो कार्य हुआ वही होनहार, निमित्त तो कर्म के उपशमादि है, उसका आत्मा कर्ता हर्ता नहीं है, वो तो स्वयं में कर्म में होता है। पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं तो यह आत्मा का कार्य है, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते, ये उपदेश की भाषा है। आत्मा को क्या उपदेश देंगे, तुम पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करने क्या करो, इन तत्वों का निर्णय करो, बस इतना ही करना है उसको। तत्व विचार में अपने को, अपने उपयोग को लगाओ, बस इतना ही करना है, और यही पुरुषार्थ है। हम तो परिद्रव्य का परिणमन करके पुरुषार्थ होने की बात समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अब यहीं रुकेंगे हम, बोलो चौबीसों।